अपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों का सजा लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
आपने अपना बना लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
दिल में फूलों का सजा लिया है, अपने क्या कहने ओ प्रभु क्या कहने।
ओम शांति, ओम शांति। मधुबन प्यारे से प्यारा, यहाँ पर आप सभी भट्टी करने आए हैं बाबा के घर में, और यहाँ पर सभी आश लगाए बैठे हैं कि हम मधुबन से भरपूर होकर के ही जाएंगे, भरपूर होके जाएंगे ना, क्योंकि मधुबन है ट्रेनिंग प्लेस, मधुबन है ट्रेनिंग प्लेस, यहाँ पर हर आत्मा भरपूर होकर के जाती है, भले बाबा के बच्चे हो या बाहर के बच्चे हो, लेकिन सभी भरपूर होकर के ही जाते हैं। यहाँ की यही विशेषता है कि बाबा की ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में हर प्रकार की आत्माएं आती हैं, कणा दाना सबको लेने के लिए, सब बाबा के घर में आते हैं। यहाँ पर आप सभी पट्टी करने आए हैं, मन से तैयार हैं कि बिल्कुल लक्ष्य रख करके बैठे हैं कि मधुबन में हर प्रकार की आपको क्लास मिलेगी यहाँ पर, जो कि दिन भर आपका वही क्लास किया हुआ आपके वहाँ पर फिर यही काम आएगा। और चलते फिरते उठते बैठते हर प्रकार से ये एक नेचुरल स्थिति बनानी अति आवश्यक है। वो ये कि मैं बिंदु ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, जिनके ऊपर भी हमारी दृष्टि पड़ती है ये सब बाबा के बच्चे होवनहार देवी देवताएं महान आत्मा हैं, शक्तिशाली आत्मा हैं। ऐसी शक्तिशाली आत्माओं का संगठन कल्प में एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो हमें भरपूरता की दृष्टि से हम दूसरों को देखें कि हम भी भरपूर हैं, ये भी भरपूर हैं। क्यों? क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को भरपूर किया है, हर प्रकार से भरपूर किया है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। क्योंकि मधुबन बाबा का घर है, इसमें सब आश लगाए बैठे होते हैं, जो भी बाहर से लोग आते हैं, और यहाँ पर सब एक ना एक दूसरे से कुछ ना कुछ गुण विशेषताएं संपर्क संबंध में आने से बहुत माला माल हो जाते हैं। एक तो बाबा से ज्ञान योग अति एक दूसरे से मिलन मनाने से अपार खुशी भी होती है, शांति का अनुभव मिलता है, अपनापन भी मिलता है, एक दूसरे पर विश्वास भी बैठता है, क्योंकि ये संगठन है। कौन सा संगठन? ब्राह्मणों का संगठन है। इस संगठन के अंदर एक हम पक्की धारणा बना लेते हैं कि हमारा एक बाबा के सिवाय और हमारा कोई नहीं है, बाबा के सिवाय हमारा और कोई नहीं है, हम सबके साथ मिलना है, सबके साथ रहना है, लेकिन रहना उपराम है। क्योंकि संगठन में रहने से एक दूसरे की विशेषताओं को जब हम देखते हैं, एक दूसरे के संपर्क संबंध में आते हैं, उसे कुछ सीखने को मिलता है, कुछ हमारे से सीखते हैं, कुछ हम उससे सीखते हैं। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि भाई 75% ज्ञान जो है कैसे मिलता है, 75% ज्ञान कैसे मिलता है, व्यवहार से, 75% व्यवहार से ज्ञान मिलता है, 25% बुद्धि में ज्ञान बैठता है, उससे सचमुच हम एक दूसरे के जब समीप आते हैं तो उससे आभास होता है समीपता का, क्योंकि हम देवी देवता बनने जा रहे हैं, उच्च कोटि की महान आत्माएं हैं, हम हमको पढ़ाने वाला भी सर्वशक्तिवान है, बेहद का बाप है। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु, उसके हम बच्चे हैं। तो हम यहाँ पर जब बैठते हैं मधुबन में आकर के, अनेक प्रकार की आपको क्लासें मिलेंगी, अनेक प्रकार के पॉइंट मिलेंगे, और उसमें जब आप घर जाएंगे, घर जाने के बाद वही आपको व्यवहार में फिर एक दूसरे के संपर्क में आने से पता चलेगा कि हम क्या मधुबन से सीख के आए थे और यहाँ क्या प्रैक्टिकल अपना स्वरूप कहाँ तक लाए हैं, वो पता वहाँ पड़ता है। वहाँ जाने के बाद व्यवहार में व्यक्ति जल्दी सीखता है। ज्ञान तो फिर भी 25% बुद्धि में बैठ जाता है, लेकिन व्यवहार में 75% जो है नज़दीक आता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप सभी लकी महान आत्माएं हो, क्योंकि आप जैसा महान इस सृष्टि पर कोई नहीं है। सारी सृष्टि आपको फॉलो करती है, क्योंकि हमारा उठना, बैठना, देखना, सोचना, संपर्क में आना, ये सब हमारा, हमको कौन फॉलो करता है? सारा संसार फॉलो करता है। कि अंत के समय आप देखेंगे कि जैसे जैसे समय और आगे बढ़ेगा, 2-4 साल के अंदर आप देखेंगे और भी समय ऐसा तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, जो कुछ भी नहीं कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा, जो हम ब्रह्म आत्माओं की व्यवहार से सबको प्रेरणा मिलेगी अंत के समय। कि यही एक महान देवियां हैं, देवताएं हैं, जिनके द्वारा ही हम कुछ अपने जीवन में ला सकते हैं, प्रैक्टिकल ला सकते हैं। ये तो नेचुरल होता ही है। आप देखते हो मधुबन जब आते हो, ऐसा क्या है जो बाबा के घर में आने से हमारा ये सब हल्का हो जाता है? ऐसा क्या चीज है यहाँ पर? क्या कशिश है यहाँ की, बता सकता है कोई? ऐसी क्या कशिश है मधुबन आने से हमारे अंदर हल्कापन आ जाता है? हाँ, देखो मधुबन में आने से सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर मम्मा बाबा की तपस्या, दादियों की तपस्या, जो वाइब्रेशन जो इतना भरपूर भरा हुआ है यहाँ पर, उसकी कहीं दूसरी जगह में मिसाल नहीं है। पूरे विश्व में कहीं भी नहीं जितना मधुबन जो हेडक्वार्टर है, जहाँ पर मम्मा बाबा ने अपना पूरा भरपूर बच्चों के लिए इतनी तैयार करके रखी हुई है वाइब्रेशन, जिसके द्वारा ही आज बाहर के लोग भी हैरान होते हैं। मुझे याद है एक सन्यासी आया था ज्ञान सरोवर में, वो कॉन्फ्रेंस में आया था। जब उनको यहाँ लाया गया पांडव वन में, तो जब पांडव वन में लाया गया तो यहाँ पांव रखते ही वो यहाँ इस स्थान को उसने पहचान लिया कि यहाँ जैसा स्थान कहीं संसार में दूसरा नहीं हो सकता है। उसने कहा ये भूमि जो है इतनी प्योर है, इसके मुकाबले में कहीं संसार में दूसरी भूमि हो नहीं सकती है। उस व्यक्ति के अंदर इतनी पावर वो कहां से आई परखने की, कहां से आई परखने की? उसने जब ये लाइन देखी ना, बाबा की झोंपड़ी से लेकर और शांति स्तंभ तक, जैसे टहला ना, टहलते हुए उसने सारा कुछ परख लिया, उसने सब कुछ परख लिया। उसने कहा ये जो लाइन है इतनी पावरफुल है कि इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, इतनी कशिश है यहाँ पर। उसको ये थोड़ी पता है कि यहाँ पर मम्मा और बाबा, वहाँ से यहाँ तक शांति स्तंभ से बाबा की झोंपड़ी तक टहलते थे। तो इतनी वाइब्रेशन बाबा हम बच्चों के लिए तैयार करके गए, तो कितने हम खुश नसीब हैं। सर्वशक्तिवान बाबा ने हम बच्चों के लिए क्या क्या नहीं किया बच्चों के लिए। अगर कोई नया मकान व सेंटर कोई बनाता है तो बनाते समय उसको ख्याल आता है कि चले अभी मधुबन में, मधुबन की मिट्टी हम 2 किलो भी ले जावे लिफाफे में डाल करके, तो उस नींव के अंदर मिट्टी डालेंगे तो पूरा वाइब्रेशन पूरी बिल्डिंग में वो पावरफुल फैल जाएगी। और उस लक्ष्य से कईयों को मिट्टी हमने दिया, अपने हाथों से भी दिया, उनको इशारा भी किया, उन्होंने मांगी कि उन्होंने कई बार कहा कि बाबा की झोंपड़ी से आप ले सकते हैं। तो ये देखो कैसी कैसी भावना वाले बाबा के बच्चे यहाँ आते, वंडर है। मुझे याद है एक भाई यहाँ पर आया था शशि बहन के ऑफिस के सामने से आकर के वहां रुक गया तो धरती को चूमा हाथ से, तो शुक्रिया किया कि हे मेरा भाग्य, हे मेरा बाबा, हे मेरी उसी तकदीर जो इस धरती पर, पवित्र धरती पर मेरे पांव पड़े हैं, मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। उस व्यक्ति ने ऐसे शब्द बोले, खड़ा हो गया, उसको देख के दूसरे भी खड़े हो गए। तो ऐसी ऐसी भावना वाले बाबा के घर में भी आते हैं, वंडर लगता है हमें। एक बार की बात है, मैं आपको अनुभव सुनाता हूं कि मैं एक बार, वैसे तो कई बार सुनाया कहीं, लेकिन क्लास नहीं है तो इसलिए सुना देता हूं। क्या था कि मैं, ठंडी के दिन थे, दिसंबर का महीना था, तो मैं काढ़ा बना के पी लिया। वो काढ़े में क्या किया मैंने, काढ़े में मैं 8-9 लौंग डाल दिए, 8-9 लौंग डाल दिए, काढ़ा बना लिया, और भी मसाले डाले, उबाला अच्छी तरह से, उबाल के उसमें मेरी ड्यूटी राजयोग भवन में थी, ज्ञान विज्ञान भवन के सामने, तो मैं पी करके सो गया, लेट गया, लेटा ही नहीं जाए मेरे से। तुरंत तो मेरे को वो जैसे नहीं, अंदर से ये आ रहा था कि भाई बाहर निकलूं, कमरे से बाहर आऊं, तो वो गर्मी थी, गर्म लग रहा था वो, तो 7-8 लौंग तो डाल दिया था मैंने। लौंग तो एक ही डालना होता है, लौंग तो एक ही बहुत पावरफुल होता है, मुझे अनुभव नहीं था, मैंने डाल दिया 7-8 लौंग डाल दिए, तो वो हो गया तेज एकदम। तो वो मेरे, फिर उस समय तो यहाँ दादा विश्व रतन था, स्वदेश बहन थी, उसने इंजेक्शन यहाँ लगाया, इंजेक्शन लगाया, फिर मेरे को नींद आई। सुबह को टाइम दीदी को पता चला, दीदी मनमोहिनी दीदी को पता चला बाबा राम को ऐसे हो गया। दीदी ने मेरे को बुलाया, कहा कोई बात नहीं बाबा राम, आप एक हफ्ते के लिए आप नीचे, उसमें नया नया खरीदा था संगम भवन, आप वहाँ एक हफ्ते के लिए जाओ, वहाँ आपको हवा पानी चेंज हो जाएगा। चला गया, दीदी ने भेजा मेरे को, वहां चला गया। वहां एक संदेशी थी बहन, उसको मैंने इशारा किया कि आप जाओ बाबा के पास, कि आप बाबा के पास जाओ, कि बाबा मेरा सांस बीच बीच में रुक जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो गलती तो मैंने कर ली है, लौंग ज्यादा डाल दिए, उसका असर उल्टा हो गया, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। तो बाबा के पास जब वो गई सवेरे अमृत वेले, तो बाबा ने कहा बच्चे पहले गलती कर लेते हैं फिर बाबा से राय पूछते हैं, फिर बाबा से राय पूछते हैं, पहले बच्चे गलती कर लेते हैं। अच्छा, बच्चे को बोलना कि गरम गरम दूध, गरम गरम दूध और गरम गरम फुलका, रोटी, ये दोनों ही तीन दिन आप लेवे, तीन दिन लेवे, गरम गरम दूध और गरम गरम रोटी, सूखी रोटी, मतलब कोई चोपड़ना नहीं घी से, उसी से ही वही आपका तीन दिन खाना आपको। ठीक है बाबा, मैंने दो दिन मुश्किल से डेढ़ दिन ही खाया मैंने, उस डेढ़ दिन के अंदर ही मेरा गला एकदम क्लियर हो गया, जैसे नॉर्मल हो गया मेरा, वंडर लगा मेरे को। उसके बाद फिर मैंने सोचा बाबा का आदेश तीन दिन के लिए था, मैं तीन दिन पूरा दिन तीन दिन लूंगा, कि तीन दिन बरोबर मैंने लिया, वो बिल्कुल क्लियर हो गया, गला एकदम नॉर्मल हो गया, वंडर है बाबा की बात। ये वंडरफुल बाबा, वंडरफुल बाबा का इलाज, इलाज भी देखो वंडरफुल। अब ये दूसरा अनुभव मैं सुनाता हूं ऐसे। एक बार की बात थी, जबकि मेरे को एसिडिटी थी, तो एसिडिटी थी तो बहुत तकलीफ थी मेरे को, तो जलन होती थी यहां पर। तो जब मैं पानी पीने गया योग के बाद, अमृत वेले के बाद 4:45 बजे, वहां जहां पानी पीते हैं ना, तो वहां मैं खड़ा था, वहां उषा बहन बम्बे वाली, जो अभी नहीं है, बम्बे की उषा बहन, प्रवेश भाई वाली उषा बहन, तो उन्होंने मेरे को देख लिया कि बाबा राम आज यहां आपका हाथ गया है, क्या बात है, तभी ठीक नहीं है आपकी। तो मैंने कहा मेरे को एसिडिटी है, कहती मैं साकार बाबा की आपको एक बताऊं, एक दवाई बाबा की, मैंने कहा बताओ। तो वो एक बार क्या हुआ कि किसी दादी को ऐसे ही एसिडिटी थी, तो एसिडिटी में बाबा को समाचार मिला कि इस बच्ची को एसिडिटी है, कुछ खाती नहीं है, ना के बरोबर ही जाता है पेट में, पेट भर के खाती नहीं है। तो बाबा उनके कमरे में आए, बाबा ने कहा बच्ची, दूसरी दो बहन पास में खड़ी थी, उसकी सेवा करती थी, उसको बोला कि 5 दिन लगातार दही की ऊपर ऊपर की जो मलाई होती है ना, वो इनको एक कटोरी भर करके रोज देना योग के बाद। कैसी वंडरफुल दवाई, तो वो तो वो इसको 5 दिन लगातार दही की ऊपर ऊपर की मलाई, दही नहीं देना, दही की ऊपर ऊपर की मलाई देना एक कटोरी भर करके 5 दिन लगातार। तो वो उसने खा ली, तो 5 दिन बरोबर खाई उसने खाली पेट, उसके बाद 1 घंटा कुछ नहीं खाना, फिर वो एकदम नॉर्मल हो गया, उस बिल्कुल नॉर्मल, कोई नाम निशान नहीं रहा एसिडिटी का। फिर बाबा, फिर 5 दिन के बाद उसके कमरे में बाबा आए, फिर बाबा ने कहा बच्ची कैसे हो, तो बाबा जैसे पहले थी वैसे ही ठीक हो गई हूँ, आपने ठीक कर दिया, बहुत बहुत थैंक्स आपका। वंडर है ना, कैसी है ना भगवान की दवाई। ऐसे ही जैसे मेरे को एसिडिटी जब हो गई थी, तो मेरे को वो, फिर वो बहन ने, उषा बहन ने जब मेरे को बताया कि आप ही करके देखो, ट्राई करो आप, मैंने कहा ठीक है, मैं भी उसी भावना से किया ट्राई, कि एसिडिटी बहुत थी मेरे को, जलन बहुत होती थी खाली पेट। फिर मैंने राजकुमार दूध डिपार्टमेंट में वहां गया, फिर मैंने कहा भाई जी मेरे को 5 दिन दही की ऊपर की मलाई मिल सकती है, मेरे को ये मेरी दवाई है। कहते हाँ बिल्कुल ले सकते हैं आप, निश्चिंत हो गए, आइए मेरे पास योग के बाद आ जाओ सवेरे 5 बजे। मैं चला गया, कटोरी भर के उसने मलाई की दे दिया, उसने दही की मलाई वही खा के आ जाता था, 5 दिन लगा था। तो बस मेरा भी ऐसे ही एकदम ठंड पड़ गई, बिल्कुल नॉर्मल हो गया, जैसे पहले था मेरा भी, बिल्कुल कुछ नहीं, तब से लेकर आज तक मेरे को बिल्कुल नॉर्मल चल रहा हूं। तो ये भगवान की वंडरफुल दवाई है, वंडरफुल दवाई है। ऐसा सुप्रीम सर्जन कोई है दुनिया में? कोई नहीं है। बाबा की दवाई, बाबा देने के बाद बाबा फिर साथ में क्या देता है? शक्ति देता है, शक्ति देता बाबा, ठीक है ना। खाली फार्मूला नहीं, शक्ति भी देता है बाबा साथ में, तब जाके असर होता है। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे बहुत बहुत खुश नसीब हैं, हमारे जैसा खुश नसीब संसार में कोई नहीं है, क्योंकि बाबा ने अथाह सुख दिया है, अथाह भरपूर सब कुछ खजाने दिए हैं। कौन सी समस्या आनी है, कौन सी समस्या के लिए क्या, कौन सा ज्ञान का पॉइंट काम आता है, वो बाबा ने सब बताया हुआ है। कैसी समस्या में क्या करना होता है वो सब बाबा ने बताया हुआ, हर समस्या का समाधान बाबा ने बताया हुआ, किसी चीज की कमी नहीं है। हम सब स्वयं ही वास्तव में एक 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 क्या है, स्वयं के डॉक्टर बने हुए हैं। अब वैसे भी आप देखा गया है कि अनुभवी सब हैं, अपनी प्रकृति की पहचान सबको है कि नहीं है, कि मेरी प्रकृति क्या चाहती है। किसी को बैंगन पसंद नहीं है तो किसी को बैंगन खाओ तो कुछ भी नहीं होता उसको, होता है ऐसे, कोई जरूरी नहीं। किसी को पेठा पसंद है तो किसी को नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है, हर की प्रकृति अपनी अपनी है। तो जैसा जैसा अपने पास हुनर है वो हुनर उनके लिए ही है, सबके लिए एक समान लागू नहीं होता है, समझे ना। एक बार की बात है, मधुबन में दादियां सब, उसमें छोटा परिवार था, दाल कम थी, तो भोली दादी बाबा के पास आई, बाबा को कहा, बाबा आज दाल कम है, आज दाल बाबा कम है, तो आज देखो क्या करें, क्या क्या करना है बाबा बताइए। बाबा ने कहा, बच्ची बोर्ड पर लिख दो, बोर्ड पर लिख दो, दाल एक बार सबको मिलेगी। बाबा ने बोल दिया कि दाल सबको एक बार मिलेगी, सबको दाल उसी अनुसार खाना है भोजन, ठीक है, बोर्ड पर लिख दिया। जब सब खा रहे हैं तो एक माता आई बीच में और वो दूसरी बार दाल लेने आ गई, तो उसको कहा कि भाई दाल आपने बोर्ड पढ़ा है? तो उसने कहा, मैं पढ़ी हुई नहीं हूं, क्या लिखा हुआ। स्पष्ट सीधा बोल दिया उसने, वो दिल की साफ थी। तो इतने में बाबा की नजर पड़ी उस बच्ची पर, बाबा ने अपने पास बुलाया। बाबा ने कहा, बच्ची क्या चाहिए? बाबा दाल नहीं है। अच्छा, बाबा ने पूछा, बच्ची बोर्ड पढ़ा? तो बाबा मैं तो पढ़ी हुई नहीं हूं। तो बाबा मुस्कुराए, तो बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा ने अपनी थाली में से दाल की कटोरी निकाल के उसकी थाली में रख दिया, बच्ची खाओ आराम से खाओ। वो अपने स्थान पर चल गई खाने के लिए। बाबा ने उस रोटी को पानी में डुबो डुबो के बाबा ने वो रोटी खाई। अब बताइए, बाबा की कमाल है ना। ऐसे दिनों पर वंडरफुल है बाबा, हमारा सागर है। हमारे बाबा जैसा कोई संसार में कोई नहीं हो सकता, दयालु कृपालु सर्वशक्तिमान बाबा, ब्रह्मा बाबा ने जो प्रैक्टिकल अपना जीवन उदाहरण बच्चों के आगे रखा, ऐसा संसार में कोई नहीं हो सकता। इसलिए बाबा नंबर वन चले गए, समझा ना। इसलिए बाबा की वंडरफुल कमाल है। एक और उदाहरण देता हूं आपको, आप सभी बाबा के बच्चे बैठे हो। एक बार एक बच्चे ने बड़ी भावना से सेंटर से इतना बड़ा तरबूज भेजा बाबा के लिए। बाबा करिए तरबूज भेजा, उस पर लिख दिया चाकू से शिव बाबा माउंट आबू। और उसके बाद वो रुड़कता रुड़कता वो तरबूज यहां माउंट आबू यहां पहुंच गया बाबा के घर पांडवों। वो तरबूज जब बाबा के हाथ में आया, बाबा ने माथे पर रखा कि मेरा बच्चे ने तरबूज मेरे लिए भेजा है। वंडर है ऐसे बच्चे बाबा के। एक माता ने गोभी का फूल बड़ी संभाल संभाल के ट्रेन में लेके आई, और वो गोभी का फूल साथ में पोटली में पता नहीं कई प्रकार के मसाले थे, वो भी दिए अपने सूरज भाई को दिए, तो उसने भी स्वीकार किए। उसने कहा हाँ ये आपकी सब्जी स्वीकार होगी बाबा को। उसने जब सब्जी बनाई और उस सब्जी में काट करके उस कढ़ाई में सब डाल दिया, उसका सब सदुपयोग हो गया। तो मधुबन में हर एक आत्मा की भावना बाबा स्वीकार करता है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार की बात, मेरे को एक भाई ने बहुत अच्छी बात सुनाई, कहा एक बार बाबा ने मुझे अपने पास बुलाया। बाबा ने कहा बच्चे जाओ बाबा के लिए बाजार से टींडे लेके आओ। वो बाबा के लिए टींडे लेने गया, थैला ले गया बाजार में, तो वहां देखा दो गायें आपस में लड़ रही थी। एक टींडे का प्रोग्राम उसको दुकानदार को पहले दे दिया कि 2 किलो आम मेरे को टींडे चाहिए। इतने में उसका ध्यान वो गायें आपस में जो लड़ रही थी उसकी तरफ ध्यान चला गया। इतने में क्या किया उसने, फायदा उठा लिया दुकानदार ने कि वो पक्का हुआ टींडा मोटा सा वो भी थैले में तोल करके थैले में डाल के कहा कि ये आपका टींडा 2 किलो। इतने में वो चुप करके टींडा लेके आ गया। इतने में जानी जाननहार बाबा यहां से, बाबा देख रहा था कि बच्चा कहां ध्यान था बच्चे का, और टींडा डालने वाले ने पक्का टींडा डाल दिया उस थैले के अंदर। जब बाबा इधर से गेट से अंदर आए और इतने में बाबा सामने से मिले, बाबा ने कहा बच्चे बाबा के लिए टींडा ले आए? जी बाबा ले आया हूँ। अच्छा चलो। जब तक वो भंडारे में, उसमें पुराना भंडारा था, उससे पहले बाबा भंडारे में कुर्सी पर जाके बैठ गए। वो सोचा बाबा आए किधर से, मेरे साथ ही तो थे, बाबा मेरे से पहले पहुंच गए। तो वो जब बाबा ने थैला उठाया तो थैले में से सीधा पक्का टींडा जो है सारा बाहर निकाला। बाबा ने कहा बच्चे ये पक्का वो टींडा बाबा को खिलाएंगे आप, ये पक्का वो टींडा लाए आप बताओ आपका ध्यान कहाँ था जब वो टींडा तोल रहा था। तो मुस्कुराने लगा, कहता बाबा पे उस समय दो गायें लड़ रही थी ना, मेरा ध्यान उस तरफ चला गया था, तो उसको मैं देख रहा था। नहीं बच्चे, आप जब भी बाजार खरीदारी करने जाओ हमेशा ध्यान रखो, एकाग्रचित होकर के चीज आप लो, नहीं तो आपका नजायज फायदा उठा लेते हैं दुकानदार। इसलिए तब से लेके उसने गांठ बांध ली कि आइंदा के लिए मैं कभी भी ध्यान इधर उधर नहीं देखूंगा, पूरा ध्यान बिजनेस में जो खरीदने जा रहा हूं मैं चीज़, उस पर ध्यान अवश्य रखूंगा। उसने ध्यान रखा, बिल्कुल ठीक रहा। एक बार वही भाई जिसने ये अनुभव किया टींडे का, वही भाई वास्तव में रहता था, उसका नाम था सत्यनारायण। वो सत्यनारायण भाई जगदीश भाई के ऑफिस में दिल्ली में वो करता था सेवा। तो एक बार जगदीश भाई ने उनको बोला कि जाओ आप प्रेस डिपार्टमेंट में जाओ, ये वो काम दे दिया कि ये वहां जाओ आप करवा के लाओ। इतने में रास्ते में ही बाहर जाने से पहले ही गुलजार दादी जी मिल गए। कहा, दादी ने पूछा तो कहाँ जा रहे हो, तो कहा मेरे को भाई साहब ने मेरे को प्रेस डिपार्टमेंट कोई काम है उसके लिए मेरे को भेजा है। दादी आप बताओ क्या काम है। तो उसने काम जो बताया तो उसने कहा दादी आपका भी मैं काम करूंगा, ये काम करने के बाद आपका मैं काम कर दूंगा। दादी कहती ठीक है ठीक है। इतने में वो काम करा करके जब वापस आया, जगदीश भाई को बोला कि मैं ऐसे ऐसे दादी मेरे को मिली थी, मैं बीच में उनको ना कर दिया। तो ना करते सुबह जैसे उसने कहा कि ना कर दिया, उसी समय जगदीश भाई ने कहा नहीं ऐसा नहीं आपको करना चाहिए था, दादी है बाबा का रथ है, उनको आपने ना कर दिया, जाओ जाके क्षमा माफी मांग के आओ कि दादी मेरे से ये भूल होगी, मैंने आपको ना कर दिया, आपने सेवा की दी थी मेरे को, लेकिन मेरा काम पीछे कर सकते थे आप, दादी का काम पहले करना था आपको। फिर वो गया दादी से क्षमा मांगने के लिए, जैसे वो दादी के पास सामने बैठा, दादी कुर्सी पर बैठी है, तो दादी के नेत्रों में क्या देख रहा है, वो साकार बाबा उसके नेत्रों में, जैसे बाबा टांग पर टांग चला करके बैठते हैं ना, ऐसे ही बाबा साकार रूप में आंखों में ही उसको प्रैक्टिकल आंखों से देख रहा है कि बाबा दादी आपके नेत्रों से तो मैं साकार बाबा को देख रहा हूं, तो मैंने किसको ना कर दिए, बाबा के रथ को मना कर दिया। दादी को बहुत बहुत हाथ जोड़े, क्षमा मांगी और आइंदा के लिए दादी मैं कभी भी आपको मैं ना नहीं करूंगा। तो ये उसने शिक्षा ले ली कि दादियां एक बाबा का बिल्कुल प्रैक्टिकल क्या है, डिटो कॉपी। दादियां बाबा का बिल्कुल डिटो कॉपी है, इसलिए कभी भी दादियों को ना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना करने से अपने को भी भारीपन महसूस होता है कि मैंने किसको ना कर दी, बाबा के रथ को मना कर दिया। इसलिए हर दादियां के अंदर इतनी पावर थी कि जो भी उनके मुखारविंद से जो शब्द निकलते थे वो प्रैक्टिकल हो जाते थे। इसलिए हम अभी जो आपके सामने जो महान आत्मा जो टीचर हैं, ये टीचरों को भी आप देख लीजिए, आप टीचरें भी कोई कम हस्ती नहीं है, बहुत महान शक्तियां देवियां हैं जिनके द्वारा इतना सेवा हो रही है, और आप प्रैक्टिकल देख रहे हो, आप चलते फिरते उठते बैठते, अगर एक एक आत्मा की विशेषताओं को अगर आप देखो तो उस विशेषताओं से आप भरपूर हो जाएंगे। आप कोई किसी की तरफ आपकी आंख नहीं डूबेगी, आपको ये नहीं महसूस होगा कि मेरे से कम है इसके पास ज्यादा है, नहीं, बस आप प्यासी नजरों से दूसरों को नहीं देखेंगे, आप आपके पास भरपूरता का ये अनुभव करेंगे आप कि जो मेरे पास है बाबा ने भरपूर रखा है, इसमें मैं तृप्त आत्मा हूं, बिल्कुल भरपूर हूं। आज भी देखो आप बाबा के बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जितनी दिल की भावना है उसी भावना अनुसार वो नंबर वार सब खुश हैं, शांति से भरपूर हैं, बाबा के प्यार जितना प्यार लूट रहे हैं वो भी नंबर वार सबको मिलता जा रहा अपनी भावना अनुसार। कोई किसी से कम नहीं है, कोई विशेषताओं से कम नहीं है, कोई महानता से कम नहीं है, सभी एक दूसरे से बढ़ करके हैं। लेकिन हम किस दृष्टि से दूसरे को देखते हैं, नहीं मेरे से ज्यादा इनके पास ज्यादा है, मेरे से ज्यादा इनके पास ज्यादा है, नहीं मेरे को जो बाबा ने दिया भरपूर दिया है उसी में संतुष्ट रहना, उसी से ही तृप्त रहना बहुत बड़ी बात है। बाबा ने हर बच्चे को खुश रखा है, हर बच्चे को एक समान बाबा ने ज्ञान दिया है। मुरली बाबा एक ही सुनाते हैं, कोई दूसरी मुरली अलग स्टूडेंट को नहीं सुनाएंगे, तीसरी मुरली अलग किसी को नहीं सुनाएंगे, मुरली एक ही है, उसमें घोड़े सवार प्यादे महारथी सब सुनते हैं, एक समान सब सुनते हैं। तो इसलिए हम बाबा के बच्चे कोई एक दूसरे से कम नहीं है, महान से महान है, क्योंकि हमारे जैसा महान इस संसार में कोई हो नहीं सकता है। क्योंकि आप सभी जितने भी यहां बैठे हो एक से एक महान आत्मा है। बाबा ने एक बार कहा था, वो बच्चा जो अंत तक विशेष अकेला अकेला ये अनुभव करेगा, अकेला अकेला ये अनुभव करेगा कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा से अलग नहीं हूं। जब ये एक एक बच्चा ये अनुभव करेगा कि बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा से अलग नहीं हूं, तब विनाश होगा। ये साकार बाबा के मां वाक्य है। इसलिए बाबा हमारे से अलग नहीं है, बाबा सदा ही हमारे साथ है। लेकिन भावना सबकी एक अलग अलग हो जाती है, जिसके बाद अनुभव भी अलग अलग होते हैं, विशेषता भी अलग अलग हो जाती है, धारणाएं भी अलग अलग हो जाती है, प्यार भी अलग अलग सबको मिलता है, एक समान नहीं। इसलिए त्याग तपस्या और सेवा का बैलेंस रखें ये बहुत जरूरी है। आए हो बाबा के घर में भट्टी के लिए, इस भट्टी के अंदर एक एक आपको जो पावरफुल क्लास मिलेगी उसको इतना प्रैक्टिकल अपने जीवन में जब उतारेंगे, आप ये समझ लो कि मधुबन पांडव भवन में चांस मिलना ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कईयों की लाइनें लगी हुई हैं कि मेरा नंबर नहीं आ रहा पांडव भवन भट्टी करने का, मेरा भी नंबर कब आएगा पता नहीं कब आएगा। लेकिन आप खुश नसीब हो, बाबा के घर में आपका नंबर लगा हुआ है भट्टी में, ये कोई बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं एक आपको उदाहरण सुनाता हूँ कि बाबा के घर में जो तरह तरह के लोग अलग अलग प्रकार की आत्माएं जो आती हैं, वो कैसे बाहर के लोग आते हैं, हमको भी वंडर लगता है। एक ग्रुप यहाँ पर आया था जो कि सुख धामे ठहरा था, और वो मीडिया वाले थे। उसमें से एक मीडिया वाला मेरे को बोला, ये मैं पहले भी क्लास में सुना चुका हूँ लेकिन आप सब नए हो ना तो उस ख्याल से मैं सुना रहा हूँ। तो ये उस मीडिया वाले ने मेरे से बोला कि मैं 3 दिन यहाँ पर आपके पास रहूँगा सुखदाम। 3 दिन रहा, 3 दिन क्या 2 दिन रहा, 2 दिन रह के टैची पकड़ा और मेरे पास बाहर मैं बैठा था रिसेप्शन में, तो कहता मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो बोला था मैं 3 दिन रहूँगा, तो अभी 2 दिन आप रहे हो, 1 दिन बाकी है। तो मुस्कुरा के मुझे क्या जवाब दिया, कहता मैं पत्रकार हूँ ना, मैं सुराख ढूंढता हूं, कमियां ढूंढता हूं। ये संस्था अंदर बाहर कितनी साफ है वो देखने के लिए मैं आपके पड़ोसियों के पास होटल में जाकर रहूंगा एक नाइट। तब मेरे को याद आया बाबा ने कहा था एक बार, बच्चे मेरा 24 घंटे मधुबन यज्ञ के अंदर, यज्ञ हो या सेंटर हो, 24 घंटे मेरा पैरा रहता है यहाँ पर। तो मैंने कहा बाबा यज्ञ आपने स्थापन किया, आप जानो ये पता नहीं किस व्यक्ति के साथ इसकी मुलाकात हो जाए, कौन क्या बोल दे इसको, तो इसलिए आप ही संभालना है इसको, यज्ञ आपका है, आप ही सेफ रखना बाबा। तो फिर वो ऐसे व्यक्ति के पास गया, उसको पूछा कि ब्रह्मा कुमारियों के बारे में आपकी क्या सोच है। तो उसने कहा ब्रह्मा कुमारियां जब से माउंट आबू में 1950 में जब यहां आई, तब से लेकर आज तक यहां माउंट आबू में अपार शांति की वाइब्रेशन, तपस्या की वाइब्रेशन इन्होंने जो बना के रखी है वो आज तक किसी दूसरे ने नहीं बना के रखी, ये उसने बोला था। और दूसरा उसने कहा कि ये वास्तव में जब से ये माउंट आबू में आई है आज तक हम देख रहे हैं कि यहाँ तपस्या की वाइब्रेशन और पवित्रता की वाइब्रेशन इनके आश्रम के कारण माउंट आबू सेफ है, ये उसने बोला। ये को कम स्पान थोड़ी है, बहुत बड़ा। फिर उसने दूसरे व्यक्ति के पास गया, उससे क्या अनुभव लिया, उससे पूछा कि ये आपका ब्रह्मा कुमारी के बारे में क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं इनके लिए। तो उसने कहा कि ब्रह्मा कुमारियां हमने समझा था कि ये केवल ज्ञान ही सुनाती हैं और कुछ नहीं, सूखा सूखा ज्ञान सुनाती और कुछ नहीं। तो जब इन्होंने जब 91 में जब ग्लोबल हॉस्पिटल खोला, तब से लेकर हमारी आंखें खुल गई कि ये लोग जब किसी को मोतिया बिंदु आंखों में हो, तो किसी के पास पैसा ना हो, तो गरीब लोग गांव से जब आते थे तो ये उनका गरीब लोगों का भी ऑपरेशन फ्री में करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर वो कहते जब एक गांव-गांव में जाकर के फ्री ऑपरेशन कर करके सबकी दुआएं लेते हैं, इन जैसी और कोई ऊंची सेवा नहीं है, ये उसने बोला था। तीसरा और भी किसी ने बोला, लेकिन सब ने जितना भी बोला पॉजिटिव बोला है, लेकिन वंडर है बाबा की कमाल है, जो बाबा का यज्ञ है बाबा ने स्थापन किया है, यहाँ तो कोई भी आता है बाबा के घर में पॉजिटिव ही पॉजिटिव यहाँ से लेके जाता है। एक ज्योतिषी आया था यहाँ पर उड़ीसा से, दादी आंगन में नवैर भाई के ऑफिस के आगे खड़ी थी, वहाँ खड़ी थी, दादी का हाथ पीछे कमर में था ऐसे। उसने दादी के चारों ओर परिक्रमा करके फिर दादी के आगे खड़ा हो गया, एक सेकंड में उस दादी का हाथ उसने देख लिया, वो ज्योतिषी था बड़ा पावरफुल, उन्हें एक सेकंड में देख लिया दादी को, हाथ जोड़ के बोलता दादी जी आप सचमुच महान हो, आप भविष्य में आप विश्व महारानी बनने वाले हो। तो दादी मुस्कुरा के पूछती आपको कैसे पता है, दादी कहती दादी को बोला कि दादी मैं ज्योतिषी हूं ना, मैं एक सेकंड में आपका पीछे से हाथ देख लिया कि आप कितने महान हो, आप यहां भी आपकी महानता है और वहां भी आपकी महानता है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ऐसे वंडरफुल सीन देखने को मिलते हैं बाबा के घर में, जब हम देखते हैं तरह तरह की आत्माएं यहाँ आती हैं और वंडर अनुभव करके जाती है। एक व्यक्ति आया था मधुबन में, ये भी मैंने सुनाया हुआ, नए है तो इसलिए सुना देता हूं, नया ग्रुप है। एक जर्मनी से एक व्यक्ति आया था, तो जर्मनी से जो व्यक्ति आया था वो किस लक्ष्य से आया था इंडिया में, कि जितने भी भारत में संस्थाएं हैं उस संस्थाओं को मैं चेक करूंगा कि किस संस्था में सबसे नंबर वन वाइब्रेशन जो है, नंबर वन वाइब्रेशन और भी प्योर वाइब्रेशन किस संस्था में है, वो यंत्र लेके आया था। तो वो पूरे भारत में जितने भी संस्थाएं थे सब तरफ उसने चक्कर लगा लिया, 15 दिन चक्कर लगा लिया, 20 दिन, उसके बाद लास्ट में हमारे पास आया। तब तक वो किसी को सुना रहा था, कहता वाह, मैं समझता था कि भारत के योगी बहुत प्रसिद्ध हैं, विदेश आते हैं हमारे पास, हम उसको बड़ी ऊंची भावना से देखते रहे, आज मैं आया हूं भारत में तो मुझे कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है कि भी मैं कहाँ है योगी, योगी कहाँ पैदा होते हैं, असली योगी कहाँ पैदा होते हैं, आज तक मेरे को प्रूफ नहीं मिला। तो उसको किसी एक ने इशारा किया, आपको योगियों का संगठन चाहिए आपको, तो आप माउंट आबू जाइए, आप किसी ने राय दिया उसको, आ गया यहाँ पर। जैसे उसने मेन गेट से अपना यंत्र खोला तो जो यंत्र वास्तव में जहां भी किसी संस्था में जाता था वो उसके दो थे निशान, के एक निशान ऐसा था जहां पर प्योर वाइब्रेशन के साथ मिक्स वाइब्रेशन होती थी तो उस कांटा आगे नहीं जाता था, जो प्योर वाइब्रेशन का जो निशान था ना ऊपर वहां तक नहीं जाता था, वहां से अटका रहता था, वो कहता था कि ये मिक्स वाइब्रेशन है, मजा नहीं आया इस संस्था के अंदर, मिक्स वाइब्रेशन है, मिलावट वाले लोग हैं, लोग मनोवृत्तियां इन उन लोगों की सबकी ऐसे है, तो वो खुश नहीं था। जब यहां मधुबन में आया तो यहां पर जब उसने यंत्र खोला बाबा का गेट के अंदर, जहां श्री कृष्ण का जो मॉडल है वहां से जब उसने यंत्र खोला, तो उसने जैसे यंत्र खोला वो खोलते ही वो कांटा जो निशान से चिन्ह पर जाना था उससे भी आगे पार चला गया। जब वो आगे कांटा आगे निकल गया तो उसको हाथ यहां आया उसका, कि आप प्रभु अब मैंने पहचाना इस स्थान को कि योगी, भारत के योगी यहां से पैदा हुए हैं, भारत के सच्चे योगी यहां से पैदा हुए हैं और कहीं नहीं हुए, यहां प्योर वाइब्रेशन। उसने यंत्र चालू रखा, दूर डिपार्टमेंट की तरफ गया, हर डिपार्टमेंट कई मेन मेन डिपार्टमेंट में गया कि कहीं कांटा नीचे आवे, कांटा नीचे आवे, वाइब्रेशन नीचे आवे, मिक्स हो, नहीं कांटा ऊपर का ऊपर ही रहा, नीचे आए ही नहीं जब तक तो गेट के बाहर नहीं गया। वंडर है ना, तो ये मधुबन कोई कम भूमि नहीं है, बहुत ऊंची भूमि है। इस ऊंची भूमि का आज हम भी और आप सभी भी उसी भावना से मधुबन में पांव रखते हो, लाइन लगी हुई है मधुबन में भट्टी है कि हमारा भी नंबर भट्टी में आए, तो इसलिए खुश नसीब हो आप सभी। मैं कहता हूं आप जैसा भाग्यशाली संसार में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि आप ऊंचते ऊंच महान शक्तिशाली हो। जो अभी आप जो भट्टी करके जाएंगे क्या जाने आगे कैसा समय आएगा, कैसा समय आएगा, एक सेकंड में क्या से क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। ये मिलाप, ये आपस में मिलना, फिर देखने को फिर कब मिलेगा, फिर कब कल्प के बाद मिलेगा, फिर ये इतने अच्छे पवित्र योगी महान शक्तिशाली आत्माएं का मिलन फिर कल्प के बाद होगा। इसलिए आप बहुत बहुत परम सौभाग्यशाली। ओम शांति।
अपनी